तो ये आज का सेशन हमारा पेटेंट रिफॉर्म्स के बारे में कि कैसे हम लोगों को उनको फिक्स करना चाहिए और उनको फिक्स करने की क्या ज़रूरत है अभी। अब जो सबसे पहले पहले जो हमारे जो पेटेंट्स के और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो लॉज बने वो US में बने और वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाले गए। अब उसी उस केस में जो सबसे एक काफ़ी मज़े का एक केस मैंने पिछले दिन एक मूवी में देखा, मैकडॉनल्ड्स का केस था एक। तो जब मैकडॉनल्ड्स के जो फाउंडर्स थे उन्होंने उसको स्टार्ट किया तो उनके पास कोई एक ना सेल्स पर्सन आया और उन्होंने उसको उस बंदे ने उनको कहा कि मैं आप लोगों की फ्रेंचाइज ज़रा ना इधर उधर लगाता हूँ और आप लोग मेरे साथ दें वरना मुझे अपने सीक्रेट्स बताएं। अब उनका सीक्रेट ये था कि 10 सेकंड के अंदर 10 बर्गर्स कैसे एक ही साथ बन जाएं। तो उनके पास उनकी टेक्नोलॉजी थी, उनका अपना वो सीक्रेट था अंदर का। अब वो उसके पास रिलीज हो गया। उसके अलावा भी उन्होंने जो एक नया जो तरीका निकाला हुआ था कि लोग काउंटर पर आके और फिर ऑर्डर दें और फिर ना सारा कुछ उनका काम हो और उनका ऑर्डर प्लेस हो और उनको ऑर्डर मिले, वो चीज़ भी उनका अपना सिग्नेचर था, उन्होंने स्टार्ट उसी से ही किया था। तो वो चीज़ उनकी अपनी थी। उस बंदे ने कहा कि मैं इसको करता हूँ, मैं इसको ना दूसरी स्टेट्स में दूसरी सिटीज़ में लेकर जाता हूँ। अब वो लोग थे शरीफ बंदे, उन्होंने उसको राइट्स दे दिए। अब क्या क्या चीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाली गई वो उन लोगों को सही तरह से पता ना लगी। उस बंदे ने मैकडॉनल्ड्स का M वाला जो आर्क है उसको भी राइट उसको भी अपना कर लिया। उन्होंने उस बंदे ने जो उसके 10 सेकंड में जो बर्गर बनना था उस चीज़ को भी अपना पेटेंट करा लिया और सारा कुछ अपने पास राइट्स अपने उसके रख लिए। अब जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे उनको मैं कोई रॉयल्टी भी हमें मिली, हालांकि पेपर्स के अंदर लिखा गया था कि उनको रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन उनको कोई रॉयल्टी मिली ही ना क्योंकि उन लोगों ने भी उस चीज़ को वायलेट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये था कि वो लोग ना अलग से कोई भी फ्रेंचाइज नहीं बनाएंगे जिसके ऊपर मैकडॉनल्ड्स लिखा हो, तो इस वजह से उनको कुछ भी ना मिला। तो इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि जो फाउंडर है उसको ही कितना ज़्यादा इस सारी चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके पास पेटेंट रिफॉर्म्स हों, उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हों। फिर अब आगे इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि ना क्यों ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि पेटेंट रिफॉर्म्स को हम लोगों ने ठीक कर सर। वो नहीं आर्टिकल था ये हाउ टू फिक्स पेटेंट रिफॉर्म, वो तो सेकंड किताब थी ना जो आपने कही थी।
दो किताबें
जी सर, ये पहली वाली है और फिर दूसरी हाउ टू फिक्स पेटेंट रिफॉर्म, फिर सेकंड वाली वो थी कि वर्ल्ड इकोनॉमी वाली।
क्या नाम है उसका?
कि नेशंस इकोनॉमी और पेटेंट्स, कि पेटेंट्स कैसे ग्रो करते हैं एक नेशन की इकोनॉमी को। वो तो बुक भी सर ना ऑडियो दी था आपको। अच्छा, तो अब किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रीज भी हैं और गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। तो अब कोई भी ना गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर के बगैर नहीं चल सकता। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ लोग हमेशा गवर्नमेंट के अंदर होते ही हैं जिसकी वजह से वो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और लॉज को ज़रा सा ना इन्फ्लुएंस करते रह जाते हैं। तो अब कोई भी नया इन्वेंशन आती है तो सबसे पहले इन लॉबीज को पता होता है कि ये वाली चीज़ आ रही है और हम लोग इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो जो मैंने पढ़ा उसमें उन्होंने लिखा था कि ना कुछ लोगों ने उन्हीं चीज़ों को पहले से ही पेटेंट करवा लिया या तो उनसे सिमिलर पेटेंट्स हो गए हुए थे। तो अब उस बिना पे उन्होंने जाके उन कंपनीज को सू करना शुरू कर दिया और वो शुरू शुरू की स्टार्टिंग कंपनीज थी, स्टार्टअप्स थे, छोटी छोटी कंपनीज थी। अब भले वो लोग पे कर सकते थे या नहीं पे कर सकते थे अपने ना फीस जो ना लीगल फीस थी वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में उनकी कंपनी आधी से ज़्यादा नुकसान में चली गई इसी वजह से, क्योंकि सही तरह से ना इन लोगों ने पेटेंट फाइल किया हुआ था जो छोटी कंपनी वाले थे, और उन लोगों ने भी सही तरह से इस चीज़ को मैं डिफाइन नहीं किया हुआ था कि किस के इन लोगों ने हमारा कौन कौन सी चीज़ कॉपी की है, जिस चीज़ की मेनली ज़रूरत अब पड़ रही है आगे, कि जो पेटेंट जो फाइल कर रहा है बंदा वो भी अपनी एक एक चीज़ फाइल करे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेटेंट्स हैं उनसे हमारा वाली इन्वेंशन कैसे डिफरेंट है, और जो अगर उनके अगेंस्ट कोई लॉ सूट कर रहा है तो वो चीज़ भी इस चीज़ को डिफाइन करे कि इन लोगों ने हमारी कौन कौन सी चीज़ कॉपी की है। अब अगर उनकी ज़रा से भी कोई आइडिया सिमिलर था, जैसे एक मिसाल के तौर पर एक कंपनी है वीलिंगो, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई जिस जो कि आगे जाके वो सीरी जो फोन्स के अंदर ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आगे से वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वो बन गया, तो उस चीज़ के ऊपर भी केस हुआ, लेकिन वो लोग वो जीत गए, लेकिन उसी उसमें उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि उनको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भी लेट गो करना पड़ गया, और उनका उनका 5 साल का नुकसान हो गया। उसके अलावा एक और थी ना लाइन कटिंग, उसके ना ऐप का नाम था, कि अब मिसाल के तौर पर आप घर में बैठे हुए हैं और आपने घर में बैठे बैठे ही कहा कि जी मुझे उस वाली जगह पर इस वाली ईयर टिकट चाहिए, तो अब मैं ईयर तो एक आम सी ऐप है, इसका तो कोई उस तरह से पेटेंट होना ही नहीं चाहिए, जिसको कि आगे इस आर्टिकल में बताया गया कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ऐसी नॉमिनल सी चीज़ों को पेटेंट नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि ना ऐसी तो 100 ऐप्स पड़ी हुई हैं, अब देव वालों की भी ऐप है, दूसरे लोगों की भी ऐप्स हैं कि जो कोई घर से बैठ कर टिकट बुक कर सकता है, टिकट अपनी ख़रीद भी सकता है, तो फिर उसी उसमें हुआ क्या कि तकरीबन 450 ना लॉ सूट्स उसके अगेंस्ट फाइल हुए कि आप ना ये इसको भुगते हैं। अब उसी उस बंदे ने ये आगे से कहा कि जी ऐसे तो मुझे 450 साल लग जाएंगे इन्हीं चीज़ों को भुगताते, और ना मेरा ना मेरी इन्वेंशन आगे जाएगी ही नहीं। इसी तरह से एक और थी, उसके अंदर था कि अब जैसे ऐप्स बनती हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि आप एना कहना ट्राई कर सकें कि तस्वीर आपकी आ गई है सामने और आपने वर्चुअली है ना उसको ट्राई करना है कि आपके ऊपर एनक वो वाली एनक का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। अब एक कंपनी ने ना इसी चीज़ का ही सिर्फ स्टार्ट किया कि जी हम लोगों का ये है और हम लोगों ने इस तरह स्टार्ट करना है, डिटो के नाम से कंपनी। एक और कंपनी ने उसको उसके ऊपर लॉ सूट कर दिया कि जी हम लोग तो इतने ना 1000 साल से कर रहे हैं ये वाला काम, और ना अब ये हम लोगों का भी काम था और हम लोग तो इतने कस्टमर्स को इधर बुला के और फिर कहते हैं, तो फिर ये चीज़ तो गलत है, और इस चीज़ के ऊपर लॉ सूट हुआ, लेकिन उसको वो लोग प्रूव ना कर सके कि जी ये लोग कैसे इंफ्रिंजमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी, सॉरी सर, मैं एक ही स्लाइड के ऊपर सब कुछ मुझे याद है, तो मैं उसके आगे मैं जाना नहीं चाह रहा। अच्छा, तो इस सारे में मैंने नतीजा यही निकाला कि मैं उनमें रिफॉर्म्स की क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहला कि पेटेंट जो कोई भी फाइल कर रहा है वो ना बिल्कुल बेसिक सा ना हो, बकायदा एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, और ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसको के वाकई ना नॉन ऑब्वियस हो और उसको कोई ना क्लेम ना कर सके कि जी ये हम लोगों ने पहले बनाई है। ज़रा सी भी अगर वेरिएशन होती है वो पहले वाले पेटेंट्स को भी स्टडी कर ले, क्योंकि एक दो ना लॉसूट्स के अंदर ये चीज़ भी उन्होंने कही कि जी मैंने तो कभी किसी पेटेंट को देखा ही नहीं है। अब उसमें किसी और का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसमें US पेटेंट ऑफिस वालों का भी कसूर है, हमारे IP ऑफिस का भी कसूर हो सकता है, कि वो लोग उस बंदे को पहले से इस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई करें कि ये चीज़ें आपकी पहले से मैं इस चीज़ में हो रही हैं, जो कॉपी होने का एक तरह से हो सकता है। लेकिन अगर जो कोई बंदा लॉसूट कर रहा है तो उस बंदे को भी हैवी फाइन होना चाहिए कि ताकि वो कभी भी दोबारा से या तो कोई और बंदा कभी भी इस तरह से लॉसूट करके और दूसरी कंपनी को नुकसान ना पहुंचा सके, जो कि छोटी सी कंपनी हो, कि मैं उनके लिए बस ये तो हमारी चीज़ थी और कोई और हम लोग उस कंपनी को खरीद लें। बिल गेट्स ने ये कहा था अपने स्टाफ को कि मैं जो कोई भी छोटी कंपनीज आ रही हैं उनके साथ इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि उनके पास पहले ही थोड़े से फंड्स होते हैं और हम लोग उनको ऐसे हजम ना करें। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जैसे ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, हम लोग अपने ट्रेड सीक्रेट्स नहीं रिलीज़ करेंगे, हम लोग किसी और के ट्रेड सीक्रेट्स खरीदेंगे जब तक हम लोग को ज़रूरत है। तो अगर कोई सवाल हो छोटी फर्म ने अपना एक ना इन्वेंशन की है, लेकिन छोटी फर्म अपना प्रूव कर सके कि ना कि उनको बिल्कुल भी कॉपी नहीं की और उनके पास कोई जरिया भी नहीं था कि वो कॉपी कर सकें। और फिर अगर ये ऐसे वो कॉपी कर लेते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो फिर एक हैवी फाइन दिया किया जाए उस बंदे को जिसने उन लोगों के ऊपर लॉसूट किया है, कि ताकि है ना बाद में ऐसी चीज़ रिपीट ना हो कि कोई छोटा सा। नहीं, बिल गेट्स से भी कहा था और वैसे भी लॉ फर्म्स ने भी आगे से कहा कि जी ऐसे होना चाहिए। तो UMT में अप्लाई करने से पहले इसको IPO पाकिस्तान में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि UMT का अपना तो पेटेंट ऑफिस यानी कि हम लोग ही हैं, लेकिन उससे पहले IPO पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे रूल्स होंगे।
हमारा मेजर कंसर्न तो UMT है ना, तब अब UMT में बेहतरी कैसे लाएंगे? UMT के साल में 10 पेटेंट या IP ऑप्शन कैसे फाइल, UMT से IP कल्चर कैसे?
हम लोगों को अपनी छोटी
सी क्या कर रहा,
हम लोगों को अपने छोटे से छोटे प्रोजेक्ट के अंदर भी ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जी ज़रा सी भी कोई कॉपिंग की ना वो वजह ही ना रहे, कि ज़रा से भी कोई ना वो कॉपी हुआ ही नहीं है। इस तरह से हम लोगों को प्रूव करने का उसका बकायदा होना चाहिए, हमारे पास वजह होनी चाहिए कि हाँ जी ये कॉपी हुआ ही नहीं है ज़रा सा भी, ताकि हम लोग जब आगे उसको पेटेंटेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, कमर्शियल तो उसकी एप्लीकेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, तो फिर उसको कोई कुछ कर ना सके, कोई उसके खिलाफ ना जा सके।
ऑनलाइन किसी में है कोई पोर्टल बना हुआ तो पता चल जाए कि इसका पेटेंट है या नहीं है?
हाँ, पेटेंट सर्च चलते हैं ना,
पेटेंट सर्च गूगल पर हो जाते हैं,
गूगल पेटेंट्स के ऊपर भी पेटेंट सर्च हो जाती है। आप अपनी क्यूरी लिखें, आप एक लफ्ज भी लिखें तो वो जिस जिस पेटेंट में यूज हुआ होगा वो सामने आ जाएगा।
पाकिस्तान
में तो पेटेंट हुआ है, तो सर वो ऊपर प्रेजेंटेशन है, 5 मिनट जरा जल्दी कर लें ऊपर। हाँ, आपने जो वेन्यू फिक्स किया था उस वेन्यू में तो कोई और मीटिंग हो रही है।